मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा
संन्यासमाध्यात्मचेतसा
निराशिर्निर्ममो
भूत्वा
युद्धस्वविगतज्वरः
युद्धस्वविगतज्वरः।
अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर का आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना मृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों को पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें इस पूरे चैप्टर कर्मयोग का सार हमको मिलता है। तो इसमें कुछ शब्द बहुत सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य, एक तो ये है अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम और युद्धस्य विगत ज्वरः। रूपा जी अंत में लिखते हैं, अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये कर्मयोग का सार है। तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति में अपने को पाता है, करेक्ट, प्रारब्ध के अनुसार उसके एक विशिष्ट प्रकार के गुणों का यह शरीर मिला हुआ है, एक विशिष्ट प्रकार का एक एनवायरमेंट उसको मिला है, उसके अनुसार उसके शरीर संबंधी कंडीशन स्टेट से संबंधी स्वधर्म उत्पन्न होते हैं। दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं, एक शरीर संबंधी और एक आत्मा संबंधी। शरीर संबंधी स्वधर्म जो शरीर मिला है, जो स्थिति मिली है, उसके अनुसार होता है। और आत्म संबंधी स्वधर्म वो सबका है कृष्ण भक्ति। तो अर्जुन सोच रहे थे, कि ये जो मेरा शरीर संबंधी जो धर्म है, कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते मुझे अभी सबको मारना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ही अरुचिकर है, और न केवल अरुचिकर है बल्कि बहुत पाप भी इसमें है, तो इसलिए मैं इसे नहीं करूँगा। लेकिन भगवान पूरी इस भगवद गीता के द्वारा प्राथमिक तो अर्जुन को पहले संदेश दिए कि अपना जो धर्म है, स्वधर्म है, सदोषों की ना त्यजेत, उसमें बाह्य रूप से दोष दिखते हैं लेकिन फिर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए जो हमारे स्वधर्म है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक हम लिबरेटेड पोजीशन में नहीं होते हैं, मुक्त आत्मा नहीं होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा यह तो आत्मरति रे विस्यात, आत्मरति को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक उनके शरीर संबंधी स्वधर्म होते हैं और आत्मा संबंधी स्वधर्म। लेकिन जब कोई लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पर होता है, तीनों गुणों से अतीत होता है, तब उसके केवल आत्मा संबंधी स्वधर्म रहता है। हालांकि फिर भी जन साधारण को मार्ग निर्देशन देने के लिए फिर भी वो कई स्थिति में ऐसा करता है, जैसे जनक महाराज का उदाहरण देते हैं आप कि वो महाजन है, जनक महाराज 12 महाजन में से एक है, जनक महाराज प्योर डिवोट, लेकिन फिर भी जन साधारण को सिखाने के लिए वे शरीर संबंधी स्वधर्म का भी पालन करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने स्वधर्मों को करो, लेकिन किस भावना में करो वो बता रहे हैं। इससे पहले तक प्राथमिक ज्ञान दिए कि निष्काम होकर करो, कामना से उसे अटैच बिना हुए करो, लेकिन जरूर करो, बिना कि आर्टिफिशियली आप ऐसे नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, तो पहले ही प्रारंभ में बता दिए नहीं न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषते, मात्र कर्म न करने से नैष्कर्म प्राप्त नहीं होने वाला आपको, और कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना किए नहीं रह सकता कर्म। तो ऐसे आर्टिफिशियली हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ सकते, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। तो लेकिन अर्जुन की सोच गलत थी कि वो सोचे थे कि ये तो पाप का कारण बनेगा, लेकिन भगवान उनको बताते हैं कि किस कॉन्शियसनेस में वो कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि वो पाप का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का कारण बनेगा, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, इट लीड्स टू लिबरेशन। तो प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं कि एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति और एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति बाह्य दृष्टि से लगता है कि दोनों समान है, लेकिन उनकी चेतना में धरती आसमान का अंतर, एक कृष्ण भावना भावित है और एक नहीं, और यही चेतना डिफरेंशिएट करती है कि वो मुक्ति की तरफ उन्मुख है या बॉन्डेज की तरफ उन्मुख है। तो आज के श्लोक से भगवान ये अभी निष्कर्ष अंतिम निचोड़ निकाल रहे हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमारी ड्यूटी है सेवा करना कृष्ण की, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये स्वाभाविक है, ये जीव का स्वाभाविक धर्म है सेवा करना, और जब तक वो कृष्ण की अनन्य सेवा नहीं करेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए परम धर्म यही है, सभी पुंसाम परम धर्म भक्ति अधोक्षजे आहितुकी अप्रत्यथा यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। लेकिन वर्तमान में भौतिक जगत में हम सभी हैं क्योंकि हम अपने परम धर्म पे स्थित नहीं है, तभी यहाँ इस भौतिक जगत में हैं, हम भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए तैयार नहीं है, इसके विपरीत हम स्वतंत्रता चाहते हैं। तो अभी इस पोजीशन से हमको ले जाना है, अपने को रेक्टिफाई करना है अपनी स्वाभाविक स्थिति में, तो उसके लिए ये मार्ग बताया है, क्रमिक मार्ग बताया है कि हम कैसे जो अपनी सामाजिक स्थितियाँ स्थिति है उसके अनुसार, जो प्रारब्ध के अनुसार हमारी जो स्थिति है उसको हम किस भावना में, तो मई सर्वाणी कर्माणी सन्निश्चय, तो जो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार जो भी हमारी स्थिति है, जो भी हमारा ऑक्यूपेशन ड्यूटी है, हमें उसे करना चाहिए, जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए, लेकिन इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन फुल कृष्ण, और वो निभाना ही चाहिए, इट्स लाइक मिलिट्री ऑर्डर, प्रभुपाद राइट्स इट्स लाइक मिलिट्री ऑर्डर, करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते, विम्सिकल नहीं छोड़ सकते हैं, मेरी करने की इच्छा नहीं हो रही है अर्जुन, विदाउट एनी शास्त्र, जो शास्त्र का प्रमाण दे रहे थे लेकिन दैट वॉज नॉट प्रॉपर। तो ऐसे विम्सिकली हम आलस्यवश अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते। बल्कि उनको ये समझ के करना चाहिए, समझ के मतलब ये जानते हुए करना चाहिए कि जो ये हमारी सोशल ड्यूटीज हैं, ये वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार, दीज आर वर्णाश्रम सिस्टम किसने बनाया, भगवान ने बनाया, सो आई एम बीन एंगेज इन दिस ड्यूटी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट माई टॉप मोस्ट ड्यूटी, लेकिन स्वाभाविक है कि मैं टॉप मोस्ट स्थिति में नहीं हूँ, तो ये जो वर्तमान मेरी स्थिति है तो भगवान के आदेश अनुसार मैं इस कार्य कर रहा हूँ, अपने वर्णाश्रम धर्म को मैं निभा रहा हूँ भगवान के आदेश अनुसार, ये चिंतन ये समझ के साथ उस कार्य करना चाहिए और समझना चाहिए कि निराशिर निर्ममो, इस संसार में जो कुछ भी है वो किसकी संपत्ति है, भगवान की है, इसलिए रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए, जो भी जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए और जो भी फल प्राप्त हो रहा है जो भी, तो उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। खैर तो ये इंस्ट्रक्शन सभी के लिए, बेसिक इंस्ट्रक्शन। तो हमारे हम गृहस्थ हैं, तो हमारे पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारी ये फैमिली ड्यूटीज हैं दे आर मटीरियल, जैसे माँ सोचती है कि बच्चे का लालन पालन जो है वो ये माया है। एक प्रभुपाद वंस एक माता जी थे, वो डेटी वर्शिप करते थे, तो वो जब उनका बच्चा हुआ तो वो पूछे प्रभुपाद जी से कि अभी मेरे को क्या करना है, तो प्रभुपाद जी बोले कि अभी ये बच्चे का को पालना ही आपकी डेटी वर्शिप, दिस इज योर ड्यूटी वर्शिप, यू डू दिस, दिस इज योर ड्यूटी, अभी आप उसको कार्य पूछो। तो आप जान देखिए अभी छोटा बच्चा है तो प्रैक्टिकली वो 24 घंटे माँ की अटेंशन डिमांड करता है, साधना भी ढंग से नहीं हो पाती है ऐसी स्थिति में, वर्षिप तो बहुत दूर की बात है, अर्चय विग्रह की पूजा सेवा, लेकिन फिर भी यू हैव टू एडजस्ट, लेकिन वो प्रायोरिटी तो है ही, बच्चे की देखभाल तो होनी चाहिए, क्या हम निगलेक्ट, और फिर समय निकालना चाहिए कभी क्या कहीं चैंटिंग हो जाए थोड़ा रीडिंग हो जाए, बट यू कैनॉट नेग्लेक्ट कि बच्चे का ध्यान नहीं रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है वो हमको निभाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था वो प्रभुपाद जी के डिवोटी डिसाइपल थे, तो हैदराबाद में प्रभुपाद जी को मिले तो संपर्क में आए, तो प्रभुपाद जी से फिर बोले कि अभी मैंने सब सुना है आपसे, तो मेरा तो शराब का व्यापार है, अभी मैं क्या करूं। सो प्रभुपाद जी बोले कि आपका परिवार है तो इमीडिएटली यू कैन नॉट लीव इट, सो कंटिन्यू फॉर टाइम बी एंड देन व्हेन प्रॉपर भगवान आपके सुव्यवस्था करेंगे फिर छोड़ दें। सो ये कंटिन्यू, और फिर जब वानप्रस्थ का समय आया तो उन्हें छोड़ करके छोड़ दिया पूरी तरह से सुना। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें रहती हैं, सो वी कैनॉट डिनाई दैट। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट विम्सिकली गिविंग अप अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द नेम ऑफ भक्ति, वी कैनॉट डू दैट। जैसे लास्ट टाइम बोल रहे थे विवाह हुआ अरे छोड़ दो डाइवोर्स दे दो, ऐसे दिस इज नॉट, डिवोशन इज नॉट इररेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इररेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो पूरी तरीके से भगवान की सेवा करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है आत्मरतिरेव स्यात्, सो तब फिर उनको अपनी भौतिक जिम्मेदारियां कृष्ण भावना करते हुए करना चाहिए और फिर वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कृष्ण भावनामृत में करने के लिए आवश्यक है साधन, नहीं तो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए अपनी सेवाओं को नहीं कर पाएंगे,
करेक्ट।
तो इसलिए ऐसा जीवन जिम्मेदारियों को इस प्रकार से निभाने के लिए अपनी लाइफ को मोल्ड करना चाहिए जिससे हमारे को साधना का भी टाइम मिले, नहीं तो हम ये जो मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्य अध्यात्म चेतसा इसको फॉलोअप नहीं कर पाएंगे। जैसे कई बार एक लेक्चर महाराज बोल रहे थे, कई बार डिवोटीज जो है ऐसा बोलते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर कृष्णा सर्विस, भगवान की सेवा के लिए मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत पैसा कमाने के लिए तो बहुत चित्त केवल वो पैसा कमाने में ही रखना पड़ता है, तो फिर कॉन्शियसनेस पूरी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है केवल पैसा कमाने में, क्या मानो तो क्या होगा फिर आप तो कृष्ण का कृष्ण के लिए कर रहे हैं ये चिंतन बड़ा मुश्किल, क्योंकि साधना का ही समय नहीं। तो नवविधा भक्ति जो है वो एसेंशियल है, सेंट्रल पॉइंट है। तो उसमें नवविधा भक्ति में प्रारंभ कहां से होता है? श्रवणम से होता है। फिर क्या आता है? कीर्तन आता है। और फिर क्या आता है? स्मरणम आता है। तो स्मरण से पहले दो एक्टिविटी क्या आई? श्रवणम और कीर्तन। तो हमको स्मरणम तब तक नहीं आएगा जब तक श्रवणम और कीर्तन नहीं है। भगवान अर्जुन को बोले माम अनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो, करेक्ट। सो दैट इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वी हैव टू डू आवर ड्यूटीज एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डू आवर स्पिरिचुअल ड्यूटीज साइमल्टेनियसली, एट लीस्ट टू परफेक्ट आवर लाइफ, दैट इज एसेंशियल थिंग। लेकिन भौतिक ड्यूटीज भी वी हैव टू डू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक तो उसका फल भगवान को देना है और वो एक्टिविटीज करते हुए भी वी शुड ट्राई टू स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसके लिए जरूरी है ये सब भावना रहे हमारी प्रॉपर, उसके लिए जरूरी है कि श्रवण और कीर्तन होए, तभी तो श्रवण होगा नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो प्रेस्क्रिप्शन है वो ये है सिंपल कि आप जो भी स्थिति में है कीजिए, अपना कार्य कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन समय निकालिए श्रवण और कीर्तन के लिए। तब आपका स्मरण होगा, फिर आप धीरे धीरे अपने कार्य को भी कृष्ण भावना में कर सकेंगे और ये सब अपने आप प्रकट होगा। निराशी निर्ममो आपको आसक्ति, फलों से आसक्ति नहीं रहेगी। अगर आप श्रवण नहीं करें तो फलों से यार आसक्ति बिना कैसे रहेंगे? आप कह रहे हैं हम पैसा खूब कमाएंगे इवन एट द एक्सपेंस ऑफ योर साधना, तो फिर क्या होगा? जब पैसा पैसा आएगा तो फिर आसक्ति भी आएगी उसके साथ, और फिर आप उस फल को भगवान की सेवा नहीं लगा पाएंगे, आप उससे अटैच हो जाएंगे। तो ये युक्त वैराग्य के नाम पर गलत यूज है उसका, युक्त वैराग्य ऐसा सबसे अलग। पर युक्त वैराग्य के लिए पहली कंडीषन क्या है? अनासक्त से विषयान, और अनासक्त होने के लिए यू नीड टू रेगुलरली हियर, और कीर्तन श्रवण और कीर्तन जरूरी है, प्रारंभिक बेसिक्स है ये। तो हमको ये बेसिक्स को हम लांग करके ऊपर नहीं जा सकते। तो ड्यूटीज वी हैव टू डू, देयर इज नो अदर वे, जो भी हमारी मेटेरियल ड्यूटीज हैं उनको हमें करना है। ऑफ कोर्स मेटेरियल ड्यूटीज के नाम पर ऐसा नहीं कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को इंद्रिय भोग की तरफ बढ़े, वो सब होगा यदि श्रवण नहीं होगा, तो क्वालिटी श्रवण नहीं होगा तो फिर वो ही भक्ति के नाम पर हम अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे देंगे, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो सब अनर्थ बढ़ेंगे फिर। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम रेगुलर श्रवण करें, तो फिर हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखेंगे, शरीर यापन के लिए करेंगे, और फिर ग्रेजुअली ज्यादा समय निकाल पाएंगे श्रवण के लिए, और उस हिसाब से धीरे धीरे अनासक्त होकर के कार्य करेंगे। तस्मा जैसे पहले ही बताया, असक्तम सततम कार्य करोति यः, अनासक्त होकर कार्य करो। तो अनासक्त होने के लिए जरूरी है, वास्तव में यदि हम अनासक्त कार्य करना चाहते हैं तो मई सर्वाणी कर्माणी समय से ये प्लेटफॉर्म पे आकर के हम अनासक्त हो सकते हैं। जब हम समझ रहे हैं कि ये दिस इज फॉर कृष्ण ओनली, रिजल्ट आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ, देन ऑटोमेटिकली वी विल बी डिटैच्ड। सो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन इज ऑटोमेटिकली डिटैच्ड। लेकिन एक आदमी जो केवल अनासक्त होने का प्रयास कर रहा है लेकिन कृष्ण भावित भावना भावित नहीं है, तो अगेन ही इज नॉट रीच द परफेक्शन। अनासक्त है लेकिन कृष्ण में आसक्त नहीं है, तो बेकार है। इसलिए ये जो श्लोक है तो सब निचोड़ करके तो भगवान डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एक चीज को इम्फेसाइज करने के लिए बता रहे हैं कि आपको पहले तो कर्म करना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ो। तो पहले तो वो इम्फेसाइज कर रहे हैं अर्जुन को कि आप ऐसे मत सोचो कि बस आप बिना कर्म अपनी जिम्मेदारियों को बस भाग जाके आप सोचो कि आप साधु बन गए, दिस इज रॉन्ग, यू कैनॉट डू दिस। आपको कर्म करना ही पड़ेगा, शरीर यापन के लिए भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए आप जब बहुत ही जगत में हम हैं तो वी हैव टू डू अवर सोशल ड्यूटीज रिगार्डिंग दिस बॉडी, वी हैव टू डू। तो वो पहले समझाए, फिर बताए कि हाँ जो आत्मरति को प्राप्त हो गया उसके लिए कोई ऐसा कर्तव्य शेष नहीं रहता है, बट स्टिल फॉर टीचिंग अदर्स ही डज दैट। और फिर बता रहे हैं कि इसलिए आप असत पे काम करो, लेकिन और एसेंशियल क्या है कि उसका एसेंस है कि आप मेरे मई जिस मई सर्वाणी कर्माणी सने से रेफरेंस टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करना चाहिए। सो इन दिस वे ये जो वर्स है ये भगवद गीता का प्रयोजन का केंद्र है, प्रयोजन बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भगवद गीता में जिसको भगवान ये रिपीट करते हैं, मत कर्म कृत मत परम संग वर्जित। सो इट्स अ वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस इन वन वे इफ वी कैन अंडरस्टैंड इट, कि भौतिक जगत में हम भोग करने के लिए हैं, ये वृत्ति से बाहर निकलना है, समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन में स्टेटेड होना है आपने। ये जो स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान है और उस वो स्थिति है उसमें अपने को स्थापित करना है, वो एसेंशियल है, उसके बिना ये सब नहीं हो सकता। मई सर्वाणी कर्माणी निराशे निर्ममो, ये सब नहीं हो सकता। जैसे लोग बाजी उधार दे रहे हैं, कैशियर है वो लाखों रुपए काउंट करता है बैंक में, लेकिन ही इज नॉट अटैच्ड बिकॉज ही नोज कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये स्वामी का है। तो अगर हम ये ज्ञान में स्थित नहीं है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो फिर हम आसक्त हो बिना कैसे रहेंगे, हम अटैच हो ही जाएंगे फलों से, कर्म फलों से हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लोभ और लोभ नरक का द्वार, काम क्रोध लोभ वो सब बढ़ेगा। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें एक लाइफ स्टाइल में एज फार एज पॉसिबल ऐसा चुनना चाहिए जिससे हम लोग को कम से कम श्रवण और कीर्तन का अच्छे से समय मिल सके। और फिर भगवान बताते हैं आगे कि ये जो मेरा मत स्वीकार नहीं करते हैं, ये मैं मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मान श्रद्धा वंदन स्वयं तो मुच्चिंत भी कर्म भी, ऐसा कर करके यू विल गेन लिबरेशन, यू विल बी फ्री, आपकी आसक्ति सब खत्म हो जाएगी और मेरे में आसक्ति बढ़ जाएगी और फिर कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत जो मेरे इस इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हैं उनका क्या होगा, ये तो ए तत् अभ्यसूयं तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विगुणांस्तान विद्धि नष्टान चेत सा। तो उनको समझना चाहिए कि ऐसे लोगों का पूरा नॉलेज वो दे आर बिविल्डर अगर वो लोग ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीन्स दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। फिर क्या होगा, वो कर्म बंधन नहीं बने रहेंगे, नो लिबरेशन नहीं होगा, जन्म मृत्यु के इस उससे नहीं निकल सकते। तो ये जो साधना में हम देखते हैं भक्ति सामर सिंधु में बताया गया है कि पहले है साधना भक्ति और फिर राग भक्ति, वैधि भक्ति, वैधि भक्ति के अंदर अंतर्गत साधना भक्ति राग अनुभव। तो ये जो वैधि भक्ति है इसमें प्रारंभ होता है नाम श्रवण, नाम श्रवण से मतलब गुरु आश्रय और ऑफ कोर्स बिफोर दैट गुरु आश्रय दीक्षा, और उसका जो केंद्र है वो है नाम श्रवण। तो इस विषय में थोड़ा हम देखेंगे आज कि क्या इंपॉर्टेंस है नाम श्रवण की, क्योंकि कई बार डिवोटीज ऐसा सोचते हैं कि हम लोग राग भक्ति में जाएंगे सीधा लीला श्रवण लीला स्मरण करेंगे, वो हायर लेवल डिवोशन है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस विषय में बहुत सुंदर बताए हैं कि आर्टिफिशियली हम लोग राग में नहीं जा सकते, श्रवणम से कीर्तन आएगा और कीर्तन से स्मरण आएगा ऑटोमेटिक। आर्टिफिशियली हम लोग स्मरण करने जाएंगे नहीं कर सकते। श्रवण कीर्तन इज स्मरण, वो करेंगे तो दैट विल इंड्यूस यू टू स्मरण, वो तरीका है। आई रीड समथिंग फ्रॉम दिस इज एक्सेप्ट फ्रॉम दिस भक्तिदान बुक जो आने वाला है। दिस इज रागानुगा भक्ति एंड सिद्ध प्रणाली। आप जानते होंगे कुछ लोग बोलते हैं सिद्ध प्रणाली, जिसमें कि गुरु जो है वो बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन का ध्यान दिए किसी भी भक्त को उनका सिद्ध स्वरूप बताए थे कि आपका कृष्ण लीला में ये स्वरूप है, उसमें 12 अंग होते हैं, आपकी ये सेवा है, ये स्वरूप है, आपकी एज ये है, इत्यादि इत्यादि 12 अंग उसके होते हैं, और फिर वो भक्त उस रूप में भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, तो इसको सिद्ध प्रणाली कहते हैं। लेकिन वास्तव में सिद्ध प्रणाली नहीं है, सिद्ध प्रणाली होती है कि हम नाम श्रवण कीर्तन से सिद्ध स्वरूप प्राप्त करते हैं, वो सिद्ध प्रणाली। तो चैंटिंग हरे कृष्ण इस सिद्ध प्रणाली, ये सिद्ध प्रणाली चैंटिंग हरे कृष्ण श्रवण, ना कि वो आर्टिफिशियली। तो ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में है, तो उसमें टॉपिक है एलिजिबिलिटी फॉर हायर भजन वाया हरिनाम, एलिजिबिलिटी फॉर हायर भजन वाया हरिनाम। श्रीला सरस्वती ठाकुर वॉज कंसर्न दैट इनडिस्क्रिमिनेट डिसेमिनेशन ऑफ स्प्यूरियस सिद्ध प्रणाली हैड रिजल्टेड इन इमोरल बिहेवियर कमोफ्लेड एज flaked as spontaneous devotion, which had led to many persons being misguided and also to diminish public regard for Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. आप जानते हैं कई लोग सिद्ध प्रणाली के नाम पर, रागानुगा के नाम पर कहते हैं कि हम गुरु ऐसा हम राग रास लीला में प्रवेश करेंगे, so then they have then affairs with the young girls of their disciples, बहुत कुछ सहजिया पंथ में ऐसा चलता है, मायावादी लोगों में भी ऐसा चलता है। न्यूली मैरिड गर्ल इज सेंट टू द गुरु फर्स्ट दैट ही विल प्यूरिफाई, सो मच नॉन सेंस गोज ऑन इन दिस नेम। तो उसी के ही बारे में लिखा है, तो ये इसीलिए हो रहा है कि हायर लेवल पे जाने के लिए वो जो गलत तरीके से, तो दिस इज प्रोपेगेटेड बिकॉज ऑफ दैट। और फिर क्या लोगों की नज़रों में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन हो सकते हैं, तो सब सहजिया लोग हैं, सब लोग सेंटिमेंटलिस्ट लोगों के लिए है, इमोरल लोगों के लिए है। दे हैव चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ये हुआ, सब अप संप्रदाय का प्रचार हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ जेन्यून शिक्षाएँ हैं जो इतने हाई लेवल तक हमको ले जाती हैं, वो सब लोग सोचे कि तो सर बहुत घटिया स्तर है।
साइकोलॉजी दैट बालदेव महाराज वृंदावन ही इज फॉलोइंग एवरीथिंग व्हाट आवर संप्रदाय टीचिंग बट दे आर स्टैंडिंग राधे राधे एंड विद
नंदन या 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 दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। They are not preaching what we are preaching. It may externally sound like that. They may chant Hare Krishna, but they are not chanting Hare Krishna. They are speaking Bhagavad Gita, but they are not speaking Bhagavad Gita. तो वो ये material sound नहीं है कि जो हम उसको perceive नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत चाहिए, सिद्धांत भक्ति का समझने के लिए कि वो क्या है। The neophyte devotee can be misled. He will think externally, it is the same thing, but it's not at all same thing. It's completely different. So we need Bhakti Siddhanta. That's why Siddhanta Bali Chitte Na Karo Alas. Iha Hoite Krishna Laki Siddhanta Manas. So we should never be lazy in understanding the Siddhantas. So agar hum Siddhanta ko samjhenge, then we will not be misled by those unauthorized people. So that's why this book will be very useful, but this Siddhanta book will clear many, many things. The proclivity for catapulting oneself onto the topmost echelon of spiritual attainment without sensible consideration of one's actual eligibility was a theme that Srila Saraswati Thakur found necessary to address repeatedly. Neophytes on the path of bhakti were prone to be allured by persons who are in all respects seemed like prema bhaktas and promised immediate entrance into the highest realms without having to undergo primary practice of purification. This is actually what is happening. Thus, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's approach to Raganuga Bhakti, his approach to Raganuga Bhakti, he stressed kirtan over artificial smaran, emphasizing that chanting of the holy name was itself Siddha Pranam, and that Chaitanya Mahaprabhu had declared it the prime benediction for Kali Yuga, by which all persons could attain Sarva Siddhi, complete perfection. Hare Krishna,
Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Prabhu Bale, Kailan E Mahamantra, Iha Jape Giya Sabe Kariya Nirbandh, Iha Haite Sarva Siddhi Haive Sabar, Sarva Krishna Bolo Itha Vidhi Nahiyar. The Lord said, I have told you the Mahamantra, chant it regularly according to the prescribed system, according to a vow, and with one pointed attention. By this you will attain all perfection. Simply always chant. There are no other rules for chanting such as those governing proper time and place as are prescribed for other Vedic mantras. Srila Saraswati Thakur insisted that sadhana bhakti based on nama bhajan must precede admission to the raga path. He would often quote Srila Jiva Goswami on the natural escalating path beginning with chanting the Lord's name, from which would progressively manifest realization of His root, guna and eventual leela. So, agar hum log naam le rahe hain, dhyan purvak, to automatically, jaise jaise hamara purification hoga, aur Bhagwan prasan honge, Guru prasan honge, to they will reveal themselves. Naam se apna root reveal hoga, guna prakat honge, leela prakat honge. हमको उसको आर्टिफिशियली इमेजिन करने की जरूरत नहीं है माइंड में, रूप को, गुण को, लीला को, विल बी ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट. तो ये जीव गोस्वामी ये सीक्वेंस बताएं कि अपने आप व्यक्ति के हृदय में नाम लेने से अपने आप रूप प्रकट होगा, अपने आप गुण प्रकट होंगे, अपने आप लीला प्रकट. जब तक प्रकट नहीं हो रहा है समझ लीजिए कि हमारे हृदय में अनर्थ ही अनर्थ, हम लोग जो नाम ले रहे हैं वो शुभ नहीं. तो चेतो दर्पण मार्जनम सीक्वेंस बताया है, जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हृदय का शुद्धि होता है और फिर जाके आनंदाम बुद्धिवर्धनम इत्यादि इत्यादि आगे स्टेज आती है. तो हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय में एक्चुअली अगर हम ध्यानपूर्वक और समझ करके कि यस दिस इज जेन्युइन प्रोसेस, ये थियोरिटिकल फेथ के साथ एटलीस्ट नाम ले रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारे हृदय के अनर्थ धीरे धीरे कम हो रहे हैं. दिस वी कैन सी आवर सेल्फ, हमारे जो भौतिक इच्छाएँ लालसाएँ वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो ये हम देख सकते हैं. तो ये तो बस जैसे बताया गया है, सूरज जब उगता है तो सूरज की किरण वो उसकी पहली किरण आते ही तो सारा अंधकार एकदम से निकल जाता है, एवरीथिंग बिकम्स वेरी क्लियर, जस्ट पौ फटना बोलते हैं उसको, वेरी इनिशियल एकदम से, और सब चोर सब वो आते ही पहले भाग जाते हैं, पहली किरण पड़ती और उसका धीरे धीरे फिर पूरा प्रकाश होता है, फिर सूरज की किरण पूरा निकलता है, फिर हम अपना काम शुरू करते हैं. वैसे ही जैसे हरि नाम का प्रारंभिक प्राकट्य भी होता है तो हमारे हृदय से ये सब जो चोर हैं अनर्थ ये सब भागने शुरू जाते हैं एक एक करके, और फिर जब सब अनर्थ निकल जाते हैं तब जा करके स्वरूप सिद्धि की अवस्था आती है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इटर्नल फॉर्म, इटर्नल इटर्नल ड्यूटीज, क्या सेवा करनी है भगवान की लीलाओं के संबंध में, क्या हमें करना है, क्या है, एवरीथिंग बिकम्स रिवील्ड देन, अनर्थ निवृत्ति के बाद, नॉट बिफोर दैट. तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हम लोग आर्टिफिशियल ट्राई कर रहे हैं स्मरण करने का, यानी लीला सोच रहे हैं कि हमारे को वो स्टेज नहीं आ रहा, लेकिन हमारा भी तो श्रवण ही नहीं हो रहा है. अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो जब हम जब कर रहे हैं तो कितना समय है कि हम ध्यानपूर्वक श्रवण कर पा रहे हैं, वन पॉइंटेड अटेंशन, कि हमारा मन कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग शांति से श्रवण कर पा रहे हैं, ऐसा होता है. इफ यू सी वेरी फ्यू मिनट्स वी आर एक्चुअली एबल टू हियर, वेरी फ्यू मिनट्स out of this total 2 hours, very few minutes we are able to hear contently without any thought in the mind. Otherwise mind, jisme batayenge ki mind is envious of the ear, mind and other senses are envious of the ear, they don't let him hear, they don't let him hear, they are envious. Achha, ye kya, I will think myself, I cannot follow him, envious, they are envious. Aur jo hum karan mein jo sab naam sun rahe hain, that is only by material ears, by material conception we are hearing. So actually we have not really started hearing the holy name, but by practicing it gradually, वो बताया जैसे कि इसमें आगे बताएंगे, जैसे बच्चे का कर्ण छेदन होता है ना, वैदिक प्रक्रिया है, कर्ण छेदन होता है, तो ऐसे जब ये स्पिरिचुअल साउंड हमारे वो ट्रांसेंडेंटल ईयर को पियर्स करती है, तब बाकी सब इंद्रियां और मन तब एक्सेप्ट करते हैं, ओके नाउ वी विल बी साइलेंट, नाउ वी विल लेट द ईयर हियर, और तब जा करके वी स्टार्ट हियरिंग द होली नेम, एंड देन विद प्यूरिफिकेशन एवरीथिंग बिकम्स रिवील्ड. It's a very systematic process. Again, if we are not hearing these basic things and we are trying to jump on the higher topics, then we will always remain immature and convert into sahajiyas and fall. Isliye Prabhupada emphasized always on this sambandh gyan. Jiva Goswami ne shad sandarbh likhe. Usme se char jo hai wo to sambandh gyan ke upar. Because unless we are established in sambandh gyan, we cannot reach this prayojan, highest stage of attainment. Isliye itna emphasis kar diya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati would similarly cite Srila Vishwanatha Thakur commentary on Srimad Bhagavatam 2.8.4, that a devotee engaged in shravanam and kirtanam does not need to separately try for his smaran. For his smaran is dependent on shravan and kirtan. He would also cite Bhaktivinoda Thakur, who had written in his song Krishna Naam Dhare Katabal, how potent is Krishna Naam. So if you just attentively hear holy name by chanting, either in the form of japa or in the form of kirtan, in a prayerful mood. So actually the process is very simple, but we think ki it must be somewhat complicated. How can it be so simple? We assume in our mind that they are saying that just here, no, it cannot be so simple, it must be somewhat fanciful, somewhat, there must be something, we have to remember something. As I'm saying, it's so complicated, otherwise process is simple. So you have to just hear attentively. So what's the problem? And everything will come by that. Kirtan ke time mein bhi, kirtan mein log sochte hai, jab kirtan hota hai, so like there should be so many instruments and dancing. Or if you are not doing kirtan in the understanding that we have to do this kirtan for pleasure of the Lord, the deity is there, if we are in the temple, or if you are not in the temple, then we are chanting this Maha Mantra, it's not for our pleasure that we are doing this kirtan, then we are not doing kirtan. Kirtan is for Lord's glorification, not for our glorification. Like dancing is for pleasure of Lord, so it should be as God has told us, as Prabhupada told, as Chaitanya Mahaprabhu used to dance. Not that we start doing rock and roll there in the kirtan, thinking that it's because we are thinking, because the in the unified stage of understanding is now I am going to temple to enjoy kirtan. Because we are always engrossed with this idea of enjoying. Main khud ke enjoyment ke liye. Isliye kirtan bhi kisliye kar rahe hain? Apne enjoyment ke liye. This enviousness is always there towards Krishna. I am for my enjoyment. Isliye हर चीज में अपने एंजॉयमेंट देखते हैं. सेवा में भी ये मेरा मन नहीं कर रहा है. सेवा शुरू करते हैं थोड़े दिन बाद फिर अभी बोर हो गए, सर दूसरा सेवा. बोर कैसे हो गए? बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ आवर एंजॉयमेंट, नॉट कृष्णा एंजॉयमेंट. तो ऐसे ही जब हम नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सो शुड बी डन इन अ प्रेयरफुल मूड, हियरिंग क्लियरली. कई बार देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आर सो हैवी साउंड दैट द नेम इज नॉट हर्ड. द एसेंस ऑफ द कीर्तन इज दैट the name should be heard very clearly. So the instrument should support this, not subside it. Ki instruments mein we are, you cannot hear the holy name, then what is kirtan? Jaise aap dekhte hain rath yatra hoti hai Baroda mein, वो गली में निकलती है तो फिर मुश्किल आता है, ढूंढ डाका ढूंढ। वो गाते नहीं है, वो तो हरे कृष्ण बोलते ही नहीं है, वो साउंड बजता है और वो डांस करते हैं, जैसे पिक्चर शादी में होता है वो डीजे। वो अब यहाँ से उस दिन जहाँ रात को लास्ट संडे दिस वॉज गोइंग एयर 12 o'clock, इतना तेज हवा, इतना तेज, मैं तो खड़ा हो गया, ये कहाँ से आ गया। फिर मैंने देखा, आई थिंक दैट मस्ट बी डीजे, आई हैव नेवर सीन व्हाट इज डीजे, आई नो, आई थिंक देयर वाज सम लाइटिंग एंड देयर वाज सम इंग्लिश म्यूजिक एंड देन इन द फ्रंट देयर वाज सम पीपल, देयर वर डांसिंग, इज इट दैट व्हाट दे कॉल डीजे?
Somebody is playing that.
DJ.
Somebody is playing?
I mean, somebody who plays a different, I mean...
tempo, there will be 20-25...
Different tracks.
Tracks, yeah. Different tracks. And there's some lighting also.
Yeah, same.
So it creates atmosphere and... Of course, there cannot be any meaning in that.
Same way, we can say that Bhakti is also... It gets hidden.
Yes.
Within this... And
this type of shows are prominent. Yes, yes. So, Kirtan, understanding should be clear. Kirtan is for the Lord's pleasure. ऐसे हम जब डांस करते हैं तो कई बार देखते हैं कि हम लोग जो कीर्तन गाने वाला है उसके चावदे इकट्ठे हो जाते हैं, या तो अपने आप चावदे इकट्ठे हो जाते हैं और डेटी को भूल जाते हैं और अपने में ही पूरा मग्न हो जाते हैं। भाई वो तो भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान को तो याद करो, तो आप लोग तो अपने आप में आप आनंदित हो रहे हो और भगवान की जैसे भूल ही गए, इट्स नॉट गुड। बैग दिखाते हैं भगवान को, खड़े हैं 5 मिनट तक भगवान को बैग दिखा के, फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड, हाउ कैन यू डू लाइक दिस? सो दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कीर्तन किसके लिए कर रहे हैं। नए नए तरीके निकालते हैं डांसिंग में, देन दे गो अराउंड दिस दैट समहाउ अट्रैक्ट, बिकॉज आजकल का पूरा यही याद है, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। सो सी आई एम डांसिंग हियर, सो अट्रैक्शन शुड बी ऑन मी, नॉट ऑन कृष्णा। हियर आई एम द ग्रेट डांसर, आई एम डांसिंग, सो यू शुड ऑल सी दैट आई एम डांसिंग हियर। सो समहाउ दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल्स अटेंशन टू दैट। सो ऐसे कीर्तन के टाइम में भी, सो लाइक प्रभुपाद डिस्करेज्ड ऑल दिस थिंग्स एंड सिंगिंग सो मेनी अदर थिंग्स, सो इट शुड बी मेजोरिटी ऑफ थिंग्स शुड बी ओनली नाम, हरि नाम, दैट इज हरे कृष्ण मंत्र, एंड अदर भजन्स एंड सम थिंग्स कैन बी authorized by your Vaishnavacharyas, that too, majority of time should be this Harinam only. Not that, कई बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग चीज आती रहती है, हरे कृष्ण मंदिर तो नाम के लिए आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब दिखाता है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, वी डोंट अंडरस्टैंड कि कीर्तन का मतलब क्या है, या जब के टाइम में अगर हम लोग सब कुछ चिंतन कर रहे हैं और नाम का ही श्रवण नहीं कर रहे हैं, अगेन दैट मीन्स वी आर ऑफ ट्रैक। सो जैसे सेवा का भी हम कर रहे हैं, ऑफकोर्स वी शुड डू सेवा, वेन वी डू सेवा वी शुड पुट अवर फुल कंसंट्रेशन ऑन सेवा, हाउ टू डू इट बेस्ट। जैसे भी रथ यात्रा के लिए हमको प्लानिंग करना है, सो चैतन्य भक्तिवान सरस्वती महाराज डेफिनेशन ऑफ कीर्तन इंक्लूडेड ऑल द प्रैक्टिकल सेवाज इन्वॉल्व इन डिसेमिनेटिंग हरिकथा। It is not just only when we are producing the sound of Hare Krishna Mantra, but activities which are like preaching activities, all that is involved in Kirtan, like printing, typing, whatever you do for propagating this Hari Katha, that is included in that. Not just that is also there, you should understand that.
Was that the same reason why he kept that printing machine?
Yeah, oh, logo, yeah, even in the logo of Gaudiya Math, there was this printing press there, because that is Brihad Mridanga, this is, so that is a right understanding of what is Kirtan. This, whatever the activities are in preaching, like many times we say, devotees say, Bhakti Sanswati Maharaj said, we should chant 64 rounds, otherwise we are fallen, correct? So Prabhupada, Bhaktivedanta was telling, so he asked one disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj that, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, so he was narrating that Prabhupada told, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj told, anyone who is not chanting 64 rounds in a day, he is fallen. But then he was surprised that in our mutt, everyone was so busy in sevas, where is the question of chanting 64 rounds? You know, everyone was going around for sevas, they were chanting 16 rounds and then they were doing their sevas. So then he asked that, Guru Maharaj, you said 64 rounds chanting, but how is it possible? Then Saraswati Maharaj replied, you cannot see that they are chanting 64 rounds. So at that time, you could understand that why Prabhupada is saying like this. But then later on, then he realized that what it means, that 64 rounds, it's like they are chanting because they are doing kirtan in that way of all publishing and all book distribution, all these activities, in that way they are doing. So this 64 rounds, for the preachers, it was not that they have to sit and chant 64 rounds. For preachers, it was like 16 rounds and doing other activities. Even that 16 rounds, sometime in hectic schedule, sometimes they will do it while like not necessarily just sitting also. Sometimes when there was great hectic seva, because he engaged them in big, big sevas of preaching activities. So that was very unique thing. So Bhaktivinoda Thakur, he says, this is a quotation from Bhaktivinoda Thakur. When the name starts to blossom in the heart, he reveals his own spiritual form and characteristic. He steals my mind and takes me close to Krishna. When the name is fully manifest, he takes me to Vraj, where he shows me my personal form and role in Krishna's eternal pastime. This is from Sharanagati. This is what Bhaktivinoda Thakur has to say, that name reveals himself. And then that song is also there. Gauranga bolite habe kulaka sharira. That sequence is given. So first you have to chant the name of Lord Gauranga. Engage our worship mood towards him, Lord Gauranga, and follow his instructions. And then, after having achieved attachment to Lord's name, Gauranga's, that is Gauranga bolite habe kulaka sharira. Hari Hari bolite nayana gabe nira. And then we will chant, that is with first the name, chanting name, then in perfection that, getting attachment to the name, and then in the sequence comes attachment towards this Nityananda Prabhu will remove all the anarthas in me, this material desires, and when the desires will be over, then I will get attached to the six Goswami's teachings, and then I can understand Vraj. Vrindavan. This is the way. Not that we can just go in Vrindavan and think that now I am residing in Vrindavan. This Vrajvas is not just by physical, it's by consciousness. So, like that, so that understanding is important. That unless we have material desires, we cannot have Vrajvas. We cannot have this Swarup Siddhi. Unless we have these material desires, hankering for all these things, material things. Shastra Sakra explained, it is impossible to have apprehension of Leela by any means other than the mercy of the Holy Name. Endeavors for Smaran without Naam Bhajan cannot be successful. Kirtan Prabhave Smaran Subhave. Kirtan Prabhave se Smaran Subhave. So that way, if you see, like Prabhupada instructions, like sometimes we wonder while doing our activities how to remember Krishna. So we have to have our regular sadhana, and as we will do our sadhana properly, that is shravanam and kirtan properly, then by the effect of that, as our consciousness becomes purified, then it will be natural effect that we will be able to do everything in Krishna consciousness very easily. It will become natural. Now we are having distractions even while chanting Lord's name because of material attachments. But as we, just as our purification hoga, we will become Krishna conscious. That will be very easy to see everything in relation to Krishna, doing everything for His service. Then automatically we will be able to remember Krishna. So artificially we won't be able to do it. Firstly, it's a very simple process. अपने जीवन को इस प्रकार से ढालिए कि आपको साधना का अच्छा समय मिले. साधना का श्रवणम कीर्तनम एंड सर्विंग कृष्णम. यू शुड बी एबल टू, यू शुड गेट टाइम टू चैंट 16 राउंड्स, गेट टाइम टू रीड प्रभुपाद बुक्स सफिशिएंटली एवरी डे 2 आवर्स एटलीस्ट. क्योंकि प्रभुपाद के सिस्टम में था भागवत प्रवचन, भगवत गीता प्रवचन एंड देन योर स्वाध्याय. तो ऐसा एक दो घंटे कम से कम रीडिंग मिले, जब मिले, और फिर प्रचार के लिए कुछ समय मिले, कुछ कीर्तन, कुछ प्रचार के लिए कुछ समय मिले, और फिर आप अपना जो रेस्ट ऑफ टाइम यू डू योर ड्यूटीज. प्रभुपाद सेड 8 hours लाइक दिस. सो इफ यू आर सर्विंग लाइक दैट, सो यू गेट सम टाइम. अब आप उसको अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते जाएंगे तब पे आप कैसे मिलेगा? Obviously, you won't find time. That's why again and again I'm stressing on this form of yoga. अगर वो भी नहीं है तो जो भी है, जहां भी आप हैं, somehow you have to adjust like that. You have to make arrangement. You have to make arrangement for shravanam and kirtanam. Naam shravanam. Attentive. Very attentive. Keep on trying for that. The transcendental power of congregational chanting automatically awakens a spontaneous remembrance of the Lord and His divine pastimes in relation to one's own eternal spiritual form. Kirtan, congregational chanting. तो जब मंदिर में कीर्तन हो रहा है, मतलब जो होना चाहिए ढंग से, तो वो neglect नहीं करना चाहिए. जो भक्त लोग जहाँ मंदिर है, तो regularly वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर खूब उत्साह के साथ कीर्तन करना चाहिए भक्तों को मिलकर के. ये दिस इज ए ट्रांसेंडेंटल पावर. उसी से ही वो सब स्मरण और सब रिवॉल्यूशन होगा. सो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दैट. मंदिर में रेगुलरली होना चाहिए, या घर में जो है, मंदिर दूर है तो घर में आपके पास, आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं आते हैं, आप ताली बजा करके और कीर्तन करो घर में बैठ करके. हर दिन शाम को होना चाहिए. गृहस्थ लोग हैं, सुबह को और शाम को तो कम से कम होना चाहिए. बीच के टाइम में आप अपना सामाजिक जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन सुबह का टाइम और रात का टाइम भजन करो, कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन करो. क्या मुश्किल है इसमें? अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह का टाइम मिल जाएगा, करेक्ट. रात को जल्दी सोना होगा तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे. और रात को जल्दी कब सोएंगे? जब एक तो टीवी नहीं होगा, प्राइम नेसेसिटी. टीवी तो मतलब समझ लीजिए जहर जैसा है वो. इट्स लाइक यू आर एसोसिएटिंग विद द वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल थ्रू टीवी, वर्स्ट कर्मीज. इसलिए अगर कोई भक्ति थोड़ा सिंसियर है, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज यू शुड रिमूव दिस टीवी आउट ऑफ हिज होम. वर्स्ट पॉसिबल एसोसिएशन इज दिस टीवी. Are you agreeing with me or not?
Yes.
क्योंकि टीवी में मतलब क्या आता है उसमें? Complete sense, grossest sense gratification आता है. Even जो आध्यात्मिक चैनल है वो भी बकवास है. Yeah. So we should just read this Yatharu Bhagavad Gita and hear lectures from the devotees who are following this in their life. Can you please close this?
एक वो चैनल और दूसरी
ये सीरियल. कौन से सीरियल?
एकता कपूर की सीरियल. वो सभी
From A to Z everything is bogus. So simple thing is just put it out. और है तो केवल you see only authorized CDs, VCDs, like Atma VCDs you can see, authorized programs proper who are authorized like that. Otherwise don't see anything. So TV. So रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठिए, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठिए, कोई बात नहीं. थोड़ा गृहस्थ में ऐसा होता है कि 9 बजे नहीं सो सकते हैं, 9:30 बजे 11 बजे तक सब काम करते हैं सोशल मीडिया, तो 11 से 5 सो सकते हैं आप, 10:30 बजे से 5 सो सकते हैं, तो 5 बजे तो कम से कम उठना ही चाहिए. तो वो तो ऑस्टेरिटी तो है ही. ऐसा नहीं कि भक्ति में बिल्कुल ऑस्टेरिटी नहीं है. आपको ये जल्दी उठना है, ये सब तपस्या जो भक्ति के लिए हेल्पफुल है वो तो करना ही चाहिए. हम तो भक्ति मार्ग में हैं, हमारे लिए कोई तपस्या नहीं है. ऐसा नहीं है. तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या तो हम करनी है. कलयुग में तपस्या है हरिनाम ढंग से लेना और प्रचार करना, ये तपस्या है भक्तों के लिए. प्रचार की तपस्या और नाम श्रवण की तपस्या. तो सुबह को जब करना किसको अच्छा लगता है? सब कठिनाई है ना सुनने में, लेकिन वो हमें बहुत उसमें ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं. हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस दिया गया उसको. जस्ट बाई हियरिंग अटेंटिवली नेम एंड लाइक ऑफेंसलेसली करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा रेगुलर भगवद गीता भागवत शुद्ध भक्तों के मुख से, तो फिर ऑफेंस निकलते जाएंगे. और नाम ध्यान रोज सुनेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सब रिवील होगा, सब रिवील होगा। तो इसलिए सबको अपना लाइफ स्टाइल ऐसे बनाना चाहिए कि उनको रेगुलर टाइम मिल रहा है, मॉर्निंग में अपना चैंटिंग हो जाए और फिर शाम को आने के बाद पढ़ाई हो जाए भागवतम भगवद गीता, और घर के सब सदस्यों को मिलकर कीर्तन करें। ऐसे जैसे आपने यहाँ बनाए हैं आल्टर, ऐसे सब घर में आल्टर हो और बैठ के हर रोज आधा घंटा 15-20 मिनट 25 मिनट आधे जितना हो सके उतना बैठ के कीर्तन करें। गौरांग चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का यही तरीका है, वो यही पसंद करते हैं कीर्तन। हम उनके पास टाइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाई चैंटिंग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज डूइंग दिस। सुबह उठते क्या करते हैं, निकल जाते हैं कीर्तन को और इंकरेज करते हैं उनको, इंड्यूस करते हैं। तो अगर हम वो करते हैं अपनी लाइफ में और दूसरे को प्रेरित करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वेरी प्लीज विद अस। सो क्या मुश्किल है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम कई बार बहुत अंदर कन्फ्यूज जाते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन एक्चुअली ये सोल्यूशन है। अगर ये करना शुरू करेंगे तो देखेंगे एवरीथिंग बिकम्स वेरी सिंप्लीफाइड, सब सिंपल हो जाती है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हमारे मन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आप अपने जीवन में देखिए, आपका चैंटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपका रीडिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है और आपका असत्संग बढ़ रहा है, आप मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ बहुत गहराई में घुल मिल रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप डिस्टर्ब होंगे, कोई कुछ उपाय नजर नहीं आएगा, सब तरफ से परेशानी घेरती दिखाई देगी। समझ लीजिए आपका यज्ञ ढंग से नहीं हो रहा है, श्रवणम कीर्तनम हो रही नहीं हो रहा है और असत्संग हो रहा है। असत्संग पहले आएगा, उसके बाद ये सब चीजें आएंगी। तो इसलिए असत्संग त्याग वैष्णव आचार, इसलिए कर्मियों के साथ केवल जितना अपने भौतिक जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक है उतना ही संग रखना चाहिए, या तो प्रचार के लिए उनको, प्रचार के लिए हम उनको जाकर कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बियॉन्ड फ्रेंडशिप मेंटेन करना जस्ट फॉर सेक ऑफ मेंटेनिंग सोसाइटी रिलेशनशिप्स, उसको लिमिट शुड कर्टेल इट डाउन टू एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो बहुत असत संघ को बताया ना, स्त्री और जो स्त्री लंपट और सब मायावादी, वो सबका संघ वेरी डिट्रीमेंटल। आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी हम लोग जब ज्यादा उनके साथ घनिष्ठ बात करते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस हम पर इफेक्ट करती है, नाम में मन नहीं लगता है, फिर जब ध्यान से नहीं होता है अरुचि लगती है कीर्तन में नाम में, ये सब प्रभाव हम देख सकते हैं तुरंत। और जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे ना तो एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, बैक टू द कॉन्शियसनेस। फील किया सब लोग ऐसा, इफ वी हियर लेक्चर और सम नाइस गुड डिवोटीज कीर्तन एंड देन इमीडिएटली वी फील लाइक फ्रेश, ओके अगेन, जैसे खो गए थे, ऐसे सपना देख रहे थे, ऐसा आता है अगेन वापस आ गए। तो इसलिए कितना जरूरी है कि हम रेगुलरली वी एसोसिएट विद सच प्योर डिवोटीज एज श्री प्रभुपाद थ्रू हिज बुक्स बाय हिज लेक्चर्स, सो वी शुड हैव टाइम फॉर दैट। तो आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, इट्स वेरी नाइस आर्टिकल, इसको और थोड़ा पढ़ेंगे कल सुबह। I'll repeat this. The name of the Lord and the Lord Himself are not two separate entities, but one. When the sound of the holy name passes over the lips of the conditioned sense of hearing and consciousness, initially process the sound as if it were material. Initially. And indeed, that is how it is perceived. So, Shushan ko lagta hai, ye bhi ek, Krishna ye bhi ek material sound hai. Aisa lagta hai. Kya ho raha hai? Kya hoga isse? तो शुरू में ऐसे ही है क्योंकि हम लोग कंडीशन हियरिंग कंडीशन कॉन्शियसनेस से परसीव कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है मटीरियल। एज ए रिजल्ट ओनली द एक्सटर्नल ईयर हियर्स इट, केवल बाहरी बाह्य कहानी उसको सुनता है ये मटीरियल। सिंस द अदर सेंसेस एंड माइंड विच इज द कलेक्टर ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस आर एनवियस ऑफ द ईयर विच दे कंसिडर टू बी एन इक्वल पार्टनर, द रिजल्ट इज दैट such chanting does not affect the cleansing of anarthas. उससे अनर्थ नहीं जाते, अगर हम वो मेटलिस्टिक कंसेप्शन बना के रखते हैं तो वो पियर्स नहीं कर पाता है, वो धुंधा धुंध रहता है, जैसे वो फॉग आता है ना ऐसे रहेगा। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ अटेंटिव हियरिंग एंड ट्राइंग टू अवॉइड दिस ऑफेंसेस। तो उससे क्या होगा, फिर वो जो मेटेरियल ईयर को पियर्स करके और फिर वो ट्रांसेंडेंटल ईयर रियल स्पिरिचुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग जो है जो हमारा उसको टच करेगा एंड देन आवर कॉन्शियसनेस विल बी रिवाइव्ड. हमारी जो ओरिजिनल सेंसेस हैं दे आर कवर्ड बाय द मटेरियल सेंसेस. सो वी कैन नॉट परसीव कृष्णा बाय मटेरियल सेंसेस. क्या श्लोक है उसके लिए? अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भर्वे तिथ्याम इंद्रिय. सो बाय मटेरियल सेंसेस वी कैन नॉट परसीव, बाय मटेरियल इयर्स वी कैन नॉट परसीव. सो वी नीड स्पिरिचुअल इयर्स टू परसीव द होली नेम. सो दैट वी विल अटेन, वी विल द होली नेम विल टच अवर स्पिरिचुअल सेंस व्हेन वी अलाउ द होली नेम टू एंटर थ्रू दिस ईयर होल बाय अटेंटिवली हियरिंग विदाउट कमिटिंग ऑफेंसेस. देन इट विल ऑटोमेटिकली टच द स्पिरिचुअल सेंस एंड. उसी तरीके से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो हमको ऑब्स्ट्रक्ट करता है हमारी लाइफ में वो है वी डोंट सरेंडर टू द अथॉरिटी. वी रिटेन माइंड एंड अवर मेटीरियल सेंसेस एज अवर अथॉरिटी. हम थियोरेटिकली समझ आते हैं कि आरोपन अवरोपन, लेकिन एक्चुअली अगर हम एनालाइज करें वी आर स्टिल कीपिंग आरोपन. हम लोग सोचते हैं हम यार चैंटिंग कर रहे हैं कुछ, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू, कुछ रिवोल्यूशन नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ लाइक डाउट्स अराइज होते हैं मन के अंदर. हम सोचते हैं क्या है ये, इसका मतलब अभी भी हम माइंड को ही अथॉरिटी बना के रख रहे हैं कि माइंड क्या कह रहा है. माइंड माइंड से हम सोचते हैं हम चैंटिंग करें लेकिन हमको कुछ परसीव नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोसेस सही है कि नहीं है. हम वी ट्राई टू डू लाइक दिस, दैट मीन्स वी आर थिंकिंग दैट दिस आवर माइंड इज द अथॉरिटी, दैट इट हैज टू सर्टिफाई दैट दिस प्रोसेस इज जेन्युइन, मीन्स दैट दिस परसेप्शन इज जेन्युइन और नॉट. आप जो परसीव कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल है कि नहीं. द मटेरियल माइंड द सेंसेस केवल जो हमारा जो ह्यूमन बर्थ में जो हमको डिस्क्रिमिनेटिंग पावर मिला है, लॉजिक सेंस मिला है, तो उससे हम वी कैन यूज इट टू आइडेंटिफाई द राइट अथॉरिटी. वहां तक ही उसकी अप्रोच है टू आइडेंटिफाई द राइट अथॉरिटी जो हर मनुष्य को मिला है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर. और राइट अथॉरिटी का सिलेक्शन आप सही किए कि नहीं किए वो डिपेंड करता है व्हाट यू वांट. सम फॉर सम पीपल somebody is the right authority, for some people somebody is the right authority, so isn't it? So on what basis it will depend? On the person's genuine interest in what he wants. So if he is not interested in genuinely understanding Supreme Personality, then he will not accept this as a right authority or a bona fide guru as a right authority. He will accept some bogus guru as a right authority or a bogus shastra literature as a right authority. So is there sincerity be important? सिंसियरिटी पर्सन, तो फिर सिंसियर अगर वो होगा और फिर भगवान की प्रेरणा से सही गुरु के संपर्क में आने से वो समझ पाएगा कि कैसे ये जो साधु शास्त्र गुरु है ये हाईएस्ट, दिस इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, दिस इज दी अथॉरिटी. एंड हैविंग रिकॉग्नाइज दैट अथॉरिटी ही विल फुली सरेंडर टू दैट अथॉरिटी. नाउ नो मोर आर्ग्यूमेंट, नो मोर वर्किंग विद दिस लॉजिक. लॉजिक देन बिकम सब्जर्वियंट टू अथॉरिटी. ब्रेन वर्क्स, नॉट दैट वी स्टॉप इट. माइंड वर्क्स, माइंड से तो काम ही करना है हमको, ऐसी बात नहीं, लेकिन देन दिस माइंड वर्क्स अंडर दिस अथॉरिटी, नॉट अबव दिस अथॉरिटी. व्हेन अथॉरिटी से दिस इज लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, इट मस्ट बी करेक्ट, आई विल अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स. दिस इज एटीट्यूड. लाइक प्रभुपाद बोलते थे कि मून इज फादर अवे देन सन. अभी कई लोग हम सोचते हैं, कई बार हमको शक होता है, साइंटिस्ट लोग ऐसा बोल रहे हैं, लगता है कि ये तो बिल्कुल आदमी चंद्रमा पे गया, अभी शास्त्र ऐसे कह रहे हैं. तो कई बार हम सोचते हैं हम कैसे शास्त्रों की बातों को समझ सकते हैं कि ये है, जबकि साइंटिस्ट लोग तो ये बता रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव नॉट एक्सेप्टेड शास्त्र एज अथॉरिटी. शास्त्र अथॉरिटी, अभी आप साइंटिस्ट को अथॉरिटी मान रहे हैं. साइंटिस्ट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ आवर माइंड. वो लोग जैसे हम अपने माइंड से सोच रहे हैं, वैसे वो लोग भी अपने माइंड को अथॉरिटी माने हुए हैं, अपने सेंसेस को अथॉरिटी माने हुए हैं. तो इंडायरेक्टली वही हम अपनी सेंसेस को अथॉरिटी मान रहे हैं, अपने माइंड को अथॉरिटी मान रहे हैं. वैसे अभी भी हम उन्हीं की अथॉरिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, माइंड की और सेंसेस की अथॉरिटी पर. इसका मतलब अभी भी हम आरोपन को चिपके हुए हैं. हम नहीं समझे हैं कि आरोपन से भगवान को नहीं समझ सकते. जो चीज अचिंत्य है, जो हमारी सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड है, उसको हम अपनी सेंसेस और मन को अथॉरिटी बनाए रख करके नहीं समझ सकते. वी हैव टू सरेंडर टू द अथॉरिटी ऑफ साधु शास्त्र गुरु. आवर माइंड शुड बिकम सब्जर्वियंट टू देम. वी शुड सिंपली सरेंडर, दैट मीन्स सर्व देम अनकंडीशनली. लेट देम स्पीक टू अस, हियर एंड सर्व देम फेथफुली एंड दे विल रिवील एवरीथिंग टू यू. डोंट पुट योर लॉजिक बियॉन्ड देम. उनके ऊपर मत रखो, फिर अथॉरिटी के ऊपर कि अथॉरिटी में ये ऐसा क्यों कहा गया, मेरे लॉजिक के अनुसार तो ये सही नहीं है. देन दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टेड दैट सुप्रीम अथॉरिटी एज अथॉरिटी. स्टिल यू आर मेंटेनिंग द माइंड एज द अथॉरिटी ओवर दिस अथॉरिटी ऑफ साधु शास्त्र गुरु. इसलिए वो सभी लोग जो भगवद गीता और शास्त्रों को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अभी भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अथॉरिटी मानते हैं. आरोप इंपीरिकल प्रोसेस, वो पहले भी डिस्कस किए थे, इंपीरिकल अप्रोच टूवर्ड्स शास्त्र, दैट विल नॉट हेल्प. जड़ इंद्रियों का काम नहीं है भगवान और ये सब विषयों को समझना. हरिनाम कर लो आप, कितना भी नाम ले लो आप, बट वॉट यू आर हियरिंग इज मटीरियल साउंड. इफ यू आर मेंटेनिंग दिस एटीट्यूड दैट आई कैन अंडरस्टैंड गॉड बाय माय मटीरियल सेंसेस, यू आर आउट. यू आर नॉट एलिजिबल टू अंडरस्टैंड गॉड कृष्ण. इसलिए हमको ये अपने हृदय में झांककर देखना है कि हम लोग सरेंडर हुए हैं इसको पूरी तरह से, अथॉरिटी को, गुरु साधु शास्त्र को पूरी तरीके से अनकंडीशनली. वंस वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस हाईएस्ट अथॉरिटी, देन नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, नो मोर लाइक आर्ग्यूमेंट्स, अनलेस दिस विम्सिकल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ट्राइंग टू पुट लॉजिक अबव दिस. सब्जर्वेंट विद लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, नॉट दैट विद द लॉजिक ट्राई टू जज इट इज राइट और रॉन्ग. विद लॉजिक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज राइट श्योर. Let me try to see, understand how it is right. Not that let me see whether it is right or wrong. Similarly, Guru. Guru bana liya. Abhi Guru ji ki baat, ye mere ko nahi jasti Guru ji ki baat. To aap phir kya Guru banaye? You have not understood what is the meaning of Shishya. Authority ka matlab kya hai phir? Arjun jaise, Arjun pehle argument. Main nahi samajhta ki ye sahi hai. Ye to paap karunga, main ye karunga, main to wo karunga. Tab tak गुरु शिष्य संबंध स्थापित ही नहीं हुआ, तब तक भगवद गीता प्रारंभ ही नहीं हुई. कब प्रारंभ हुई? सरेंडर. लेकिन उसके बाद भी अर्जुन सरेंडर होने के बाद भी बोलते हैं अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा. आप सरेंडर हो गए तो फिर देर दो क्वेश्चन हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा. सरेंडर होने के बाद मतलब आपको गुरु से पूछना मैं क्या करूं, दैट्स ऑल. अब आपको अभी ये नहीं कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, फिर क्या सरेंडर हुआ? तो इसलिए भगवान डांटते हैं. बहुत बड़ी बात करते हो लेकिन मूर्ख जैसे बात करते हो. फिर उसको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग शुरू करो. सो गुरु के समक्ष भी हमको गुरु चयन करो, ढंग से शांति से करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी मत करो पूरा. कोई गुरु मतलब क्या है? आप उसको पूरा सरेंडर होने वाले हो, फिर इस बट नहीं चलेगा सरेंडर उसको होने के बाद में. गुरु जी आप ये बात बोल रहे हैं मैं सहमत नहीं उससे, अरे भाई why you accepted such a guru then if you cannot surrender to him? So don't surrender, don't select a guru whom you cannot surrender. Select a guru whom you can surrender fully, no if but. So no hurry, shanti se karo, no problem. Lekin ek bar surrender hue fir apne ko aage hoshiyar mat dikhao, if but mat lagao aage ki guru ji ye baat nahi bolte dhang se, guru ji ye sahi nahi hai, guru ji ye sahi hai. आप कौन हो गुरु जी को पहचान करने वाले? गुरु जी ये सही नहीं है, गुरु जी ये सही है. तो आप होंगे गुरु जी कि गुरु जी आपके गुरु हैं? Who gave you this right that you can judge the guru? So this attitude you should not maintain. Similarly with the शास्त्र, ये अपराध है कि हम शास्त्र को देखें कि शास्त्र निंदा. It should be a surrendered. This is supreme truth. That should be the attitude. That is surrender. Surrender कोई आसान चीज नहीं है, lip service नहीं है. I am surrendered to you. The surrender means now you should simply try to please him. That should be only concentration, only focus. How to please Guru? और न करियो मने आसन, just a minute. और न करियो मने आसन. गुरु मुखा पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिया आक्या. Or na kariyo mana. There should be no other desire, simply only one desire, how to please Guru. If you have come to this platform, that means you are a Shishya. Otherwise, you are not a Shishya.
These days, this particular word surrender is used by many
Yes.
To surrender people in the appropriate way. They basically, what they say, they will do. So whether they have made this word so rigid and so cruel, that hardly, I mean, whenever people heard of surrender, they can say fine, they get fractured.
No, we have to surrender to a guru. There is no other way. Tasmat gurum prapadyet jigyasu shreya uttama tad vijnanartham gurum ivarivatachet. That is sure, we have to surrender to guru. So that is strong verdict is correct. That strength, that emphasis given, that we must surrender is correct. But prerequisite to that is that he should be guru.
So
that means the shishya is bogus and the guru is bogus. Because if agar usko koi jabardasti surrender karwa raha hai, that means he wants something cheap. So that is a different case. So we need a bona fide student and a bona fide teacher. Hare Krishna.